आरंभ प्राणी पीड़ा हेतु व्यापार। आरंभ का मतलब प्राणियों को पीड़ा हो उसमें कारणभूत कोई व्यापार यानी प्रवृत्ति। ममेदम बुद्धि लक्षण परिग्रह, परिग्रह किसको कहते हैं, ये मेरा है ऐसी मान्यता जिसका लक्षण है उसको परिग्रह कहा। कोई भी वस्तु उसके प्रति ममत्व वो परिग्रह। आरंभाश्च परिग्रहाश्च आरंभ परिग्रह। अब समास बना के बता रहे बहुआ आरंभ परिग्रह यस्य स बहुआरंभ परिग्रह, जिसके पास बहुत आरंभ और परिग्रह हो वो बहुआरंभ परिग्रह कहलाता है। तस्य भावो उसका भाव क्या है, बहुआरंभ परिग्रहत्वम। हिंसादि क्रूर कर्माजस्र प्रवर्तन, हिंसादि क्रूर कार्यों में अजस्र यानी निरंतर प्रवर्तन करना। प्रवर्तन मतलब अपने आप को लगा के रखना और फिर दूसरों को भी उसमें जोड़ देना। परस्वहरण दूसरे के धन को चुराना। विषयातिग्रद्ध विषयातिग्रद्धि माने विषयों में अतिग्रद्धता होना, बहुत आसक्ति होना। और कृष्ण लेश्याभिजात रौद्र ध्यान मरण कालता, कृष्ण लेश्या से उत्पन्न हुआ है रौद्र ध्यान जिसको, और वो मरण काल में हो, कृष्ण लेश्या के साथ मरण काल में अगर रौद्र ध्यान रूप भाव हुआ तो समझ लेना कि नरक जाने वाला जीव है। नरकस्य आयुष आश्रवो भवति, वो नरक आयु का आश्रव होता है। आहा उक्त नरकस्य आयुष आश्रव, नरक आयु का आश्रव बतला दिया। तैर्यक यौनस्य इदानीं वक्तव्येति अत्र उच्यते, तिर्यंच यौनि संबंधी जो आश्रव है उसको अभी बतलाना है तो यहाँ पर कहते हैं माया तैर्यक यौनस्य, माया जो है तिर्यंच यौनि का आश्रव है। चारित्र मोह कर्म विशेषस्य उदयात आविर्भूत आत्मन कुटिल भावो माया निकृत ही तैर्य ज्ञान से आयुष आश्रवो वेदितव्य। चारित्र मोह कर्म का जो एक विशेष यानी भेद है, माया नाम का एक होती है ना कषाय, उसके उदय से प्रकट हुआ जो आत्मा के अंदर का कुटिल भाव है उसको माया जानना, और उसी को निकृति भी कहते हैं। माया का पर्यायवाची शब्द है निकृति। तैर्य ज्ञान से आयुष आश्रवो वेदितव्य, वो तिर्यंच योनि के आयु का आश्रव जानना। तत्प्रपंचो उसका और विस्तार क्या है, तिर्यंच योनि में जाने के लिए और क्या क्या होता है, तो मिथ्यात्वोपेत धर्म देशना, मिथ्यात्व से युक्त धर्म की देशना। फिर निशीलता, शील का अभाव होना। अतिसंधान प्रियता, खूब छानबीन करने को पसंद करना वही जिसको प्रिय होता है। फिर नील कपोत लेश्यार्थ ध्यान मरण कालता आदि, और नील अथवा कपोत लेश्या के साथ आर्थ ध्यान पूर्वक मरण के काल होना, ये भी तिर्यंच गति में पहुंचाने वाला है। मतलब कृष्ण लेश्या के साथ रौद्र ध्यान होगा तो फिर नरक जाएगा मरते समय, और नील अथवा कपोत लेश्या के साथ आर्त ध्यान के साथ मरेगा तो तिर्यंच गति प्राप्त होगी। आहा फिर कोई कहते हैं व्याख्या तैर्य ज्ञान से आयुष आश्रव, ठीक है तिर्यंच योनि संबंधी आयु का आश्रव बतला दिया। इदानीम इस समय मनुष्य से आयुष को हेतु इत्यत्र उच्यते, अब मनुष्य की आयु का क्या हेतु है इसलिए यहाँ कहते हैं अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह होना मानुषस्य मनुष्य संबंधी आयु के आश्रव। नारक आयु आश्रव व्याख्या था, नारक आयु का आश्रव बतला दिया था। तद विपरीतो मानुषस्य आयुष इति संक्षेप है, संक्षेप से ही समझ लो कि उससे उल्टा जो है वो मनुष्य आयु का आश्रव है। तद व्यास उसका विस्तार क्या होगा, विनीत स्वभाव नम्र स्वभाव होना, प्रकृति भद्रता स्वभाव से भद्र यानी सज्जनता होना, प्रगुण व्यवहारता, प्रगुण व्यवहारता माने सरल व्यवहार होना, तनु कषायत्व और थोड़ी कषाय होना, मरण काला संक्लेशता आदि, मरण काल में संक्लेश माने तीव्र कषाय का अभाव होना आदि जो है मनुष्य आयु का आश्रव है। मैंने ऐसा जीव मनुष्य बनता है, अपन सब ये सब कर आए हैं पिछले जन्म, पूर्व जन्म में अपन ने मरने के पहले इस प्रकार के कुछ भाव कर लिए थे तो यहाँ आ गए हैं। अब देखो अब नेक्स्ट क्या है इसके आगे का क्या कार्यक्रम है, कि मेतावान एवं मनुष्य से आयुष आश्रव इत्यत्र उचित, क्या इतना ही मनुष्य आयु का आश्रव है। तो इसलिए यहाँ पर अगला सूत्र कह रहे हैं स्वभाव मार्दवंश, स्वभाव मार्दवंश ये भी मनुष्य पर्याय का कारण है। मृदोर भाव मार्दवंश, नरमता का जो भाव, नरमाई जो होती है उसको मार्दव कहते हैं। स्वभाव ही न मार्दम स्वभाव मार्दम, स्वभाव से ही मृदुता होना यानी अहंकार न होना। क्या मतलब हुआ इसका? उपदेश अनपेक्षा मित्यर्थ। देखो उपदेश सुनकर के कोई विनम्र होता है और किसी को उपदेश न दो तो भी नरमाई है, नम्र है, तो वो एतद अपि मनुष्यस्य आयुष आश्रव, ये भी मनुष्य की आयु का आश्रव है। पृथक योग करणम किमर्थम, बोले कि अलग से आपने ये क्यों सूत्र लिखा है, तो बोले उत्तरार्थम, आगे एक सूत्र और आने वाला है, देवायुष आश्रव अयम अपि यथा स्यात्, जिससे कि इसको देवायु का आश्रव भी बना सकते हो आप, कि एतदेव द्वितीयम मानुष्य आयुष मानुष्य आश्रव, क्या यही दो मनुष्य आयु के आश्रव है? तो बोलते हैं ना, इति उचित, इसलिए कहते हैं कि और भी एक आश्रव है मनुष्य बनने में, और भी एक कारण, निशील व्रतत्वं च सर्वेषां च शब्दोधिकृत समुच्चयार्थ। अभी जो अधिकरण यानी प्रकरण चल रहा है उसका संग्रह करने के लिए च शब्द दिया है, अल्पारंभ परिग्रहत्वं च निशील व्रतत्वं च निशील व्रतत्वं च शीलानि च व्रतानि च शील व्रतानि तानि वक्षन्ते, शील और व्रत, इनको शील व्रत कहते हैं, ये आगे कहेंगे। निष्क्रांत व्रत शील व्रतेभ्यो निशील व्रत, जो इन दोनों से रहित है वो निशील व्रत है। तस्य भाव, उसका जो भाव होता है निशील व्रतत्वम। सर्वेशां ग्रहणम, सबका ग्रहण क्यों किया है, सीत्र में सर्वेशां क्यों लिखा, सकल आयु और आश्रव प्रतिपत्त्यर्थम, ये सभी आयु के आश्रव की जानकारी देता है। किम देवायुषोपि भवति, क्या देवायु में भी शील और व्रत से रहित कोई हो तो उसको देवायु का भी आश्रव हो सकता है? सत्यम, हो सकता है। भवति भोग भूमिज अपेक्षा, भोग भूमिज की अपेक्षा से हो सकता है, वहां मंद कषाय रहती है, शुभ लेशा रहती है। तो इस प्रकार निशील व्रतत्व जो है वो मनुष्य में भी पहुंचा सकता है, तिरंच में भी ले जा सकता है, सभी चारों आयुओं में शील और व्रत का अभाव हो तो जीव जा सकता है। देवायु में कैसे जा सकता है, तो भोग भूमि की अपेक्षा से। अथ हाँ, भोग भूमि वाले जीव जो इससे रहित है, शील और व्रतों से रहित है, तो वो देवायु में उत्पन्न हो सकते हैं। अतः चतुर्थ से आयुष का आश्रव इति अत्र उच्यते। अब चौथी जो देवायु है उसके आश्रव क्या है तो बतलाते हैं। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम संयमा संयमश्च व्याख्या। तो सराग संयम किसको कहते हैं, तो मुनि अवस्था में जहाँ तक राग है उस राग के साथ जो पलने वाला संयम सराग संयम है। फिर संयमा संयमश्च, संयमा संयम 18 क्षयोपशमिक भाव में बतलाया था मैंने, पंचम गुण स्थान का जो संयम होता है वो, ये दोनों देवायु के कारण है। फिर अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा का अर्थ क्या होता है, अकामश्चारक निरोध बंधन बद्धेशु क्षुत्रिष्णा निरोध ब्रह्मचर्य भूषय्या मलधारण परितापादेह। अकाम चारक में रोक रखने पर या रस्सी आदि से बांधे रखने पर जो भूख प्यास सहनी पड़ती है, यानी चारक का मतलब कहीं किसी कैद खाने में या कहीं पर भी बंधन में पड़ गए तो वहाँ पर भूख प्यास को चुपचाप सहन कर रहे हैं, फिर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, परिस्थिति वैसी बन गई तो पालन कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का, फिर भूषैया धरती पर सोना पड़ रहा है, मल धारण शरीर पर धूल जमी हुई है, परिताप और भी दूसरे कष्ट सहन करना पड़ रहे हैं, तो ये सब अकाम निर्जरा के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब कामना नहीं की थी निर्जरा की, निर्जरा की कामना से ये सब स्थितियां प्राप्त नहीं हुई थी, इस परिस्थिति में ऐसे पड़ गए तो भी चुपचाप इसको सहन कर रहे हैं, तो चुपचाप सहन करना भी देवायु का कारण बन जाता है। अकामीन निर्जरा, अकाम निर्जरा, बिना कामना के निर्जरा होती है उसको अकाम निर्जरा। बाल तपो, बाल तप क्या है, मिथ्या दर्शन उपेत मनु, मिथ्या दर्शन उपेतम अनुपाय काय क्लेश प्रचुरम, मिथ्या दर्शन से युक्त और अनुपाय जो मोक्ष का उपाय नहीं है ऐसे काय क्लेश प्रचुरम, काय क्लेश जिसमें प्रचुर है, आग जला करके बैठे हैं पास में तो उसकी गर्मी सहन करनी पड़ रही है, लेकिन वो मोक्ष का उपाय नहीं है। फिर निकृति बहुल व्रत धारणम, और छल कपट की जिसमें अधिकता है ऐसे व्रतों को धारण करना, तान्य तानी वे सारे देवा से आयुष आश्रव हेतु वो वेदितव्य देवायु के आश्रव हेतु जानने चाहिए कि मेतावान ही देव से आयुष आश्रव आश्रव क्या इतने ही देवायु के आश्रव ना नहीं इतने नहीं है और ज्यादा है इति आह इसलिए बतलाते हैं सम्यक त्वंच सम्यक भी देवायु में पहुंचा देता है किम क्या देवस्य आयुष आश्रव इति अनुवर्तते अनुवर्तन चलेगा पिछले सूत्रों से अविशेषाभिधाने पी अब यहाँ पर भेद नहीं बतलाया था कि कौन से देवों की आयु का बंध हो रहा है तो भी सौधर्म आदि विशेष गति यहाँ पर ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि सम्यक जो होगा देवायु में पहुंचाएगा तो सौधर्म आदि में ही जाएगा सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में नहीं जाएगा कुत ये कैसे समझ में आया तो आचार्य उत्तर देते हैं पृथक करणार्थ क्योंकि ये सूत्र अलग से लिखा है ये तो देवायु के साथ में सम्यक्त को भी जोड़ देते थे लेकिन नहीं सम्यक्त को अलग से इसलिए लिखा क्योंकि सम्यक्त दृष्टि जीव वैमानिक देव बनेगा ठीक है ना बाकी देवों में उत्पत्ति उसकी नहीं होगी यदि देवम यदि ऐसा है तो पूर्व सूत्र उक्त आश्रव विधि अविशेषेण प्रसक्त तो फिर पिछले सूत्र में कही हुई जो आश्रव विधि है वो समान रूप से प्राप्त हो गई तेन इसलिए सराग संयमा संयमा संयम सराग संयम संयमा संयमऊ अपि भवन वास्याद्यायुष आश्रव प्राप्त फिर पिछले सूत्र में जो सराग संयम और संयमा संयम बताए थे तो उनसे भी भवनवासी अधिक के आयु का बंध प्राप्त होगा नैष दोष आचार्य कहते हैं कि नहीं ये दोष नहीं लगेगा क्यों सम्यक्त्वाभावे सति तद व्यपदेशाभावात् बोले कि सम्यक्त का अभाव होने पर संयम को ये सराग संयम भी नहीं होता और संयमा संयम भी नहीं होता कहने का मतलब ये हुआ कि सराग संयम और संयमा संयम में तो सम्यक दर्शन गर्भित है इसलिए वो वैमानिक देव ही बनेगा वो लेकिन बाकी जो बाल तपादिक जो हैं अकाम निर्जरा उससे भवनत्रिक में जा सकता है तद उभय मप्यत्रांतर भवति वो दोनों भी इसमें सम्यक्त में अंतर्भूत हो जाते हैं आयुषोनंतरमुद्दिष्टस्य नामना आश्रव विधौ वक्तव्य अब आयु के बाद कहा हुआ जो नामकर्म है आठवें अध्याय में उसकी आश्रव विधि का यहाँ पर वक्तव्य है तो तत्र उसमें अशुभ नामना आश्रव प्रतिपत्त्यर्थमाह अशुभ नामकर्म के आश्रव की प्रतिपत्ति के लिए कहते हैं जानकारी के लिए बतलाते हैं अशुभ नामकर्म किसको कहते हैं जिस कर्म के उदय से जीव लंगड़ा लूला कुरूप दुस्वर वाला खड़ आवाज उसकी अच्छी नहीं होती या फिर किसी को पसंद नहीं आता वो सुंदर होने पर भी कोई उसको चाहता नहीं ये सब जो परिणाम मिलते हैं ये नाम कर्म के उदय से होते हैं अशुभ नाम कर्म के उदय से अब प्रश्न ये है कि अशुभ नाम कर्म बंधता कैसे है तो इस आश्रव से बनता है योग वक्रता विसंवादन चाशुभस्य नामनः योगस्त्र प्रकारो वे व्याख्या था तीन प्रकार का योग होता है व्याख्या में आ चुका है मन वचन और काय संबंधी तस्य वक्रता कौटिल्यम उसकी वक्रता का मतलब कुटिलपना विसंवादनम अन्यथा प्रवर्तनम विसंवादन का अर्थ होता है अन्यथा प्रवृत्ति कराना ननु चनार्थ भेद है बोले कि कुशंकाकार कहता है कि इन दोनों में तो कोई अंतर नहीं है मन वचन काय का टेढ़ापन या फिर विसंवादन दोनों एक ही बात है योग वक्रतैव अन्यथा प्रवर्तनम योग की जो वक्रता है योगों की वही अन्यथा प्रवर्तन है सत्यमेव एतत् सत्यमेव मेतत् आचार्य कहते हैं कि ठीक तुम सही कह रहे हो लेकिन स्वगता योग वक्रता इति उच्यते अपने अंदर मन वचन काय की कुटिलता हो तो उसको योग वक्रता कहा जाता है और परगतम विसंवादन दूसरे के अंदर मन वचन काय की कुटिलता पैदा करा दो तो उसको विसंवादन कहते हैं तो जैसे उदाहरण उसका क्या है तो सम्यक अभ्युदय निःश्रेय सार्थासु क्रियासु सम्यक जो अभ्युदय माने देवलोक संबंधी और निःश्रेयस यानी मोक्ष संबंधी क्रियासु जो क्रियाएं होती हैं उसमें हेतुभूत उसमें प्रयोजनभूत जो क्रियाएं होती जो देवगति में या मोक्ष में पहुंचाने वाली क्रियाएं हैं उनमें प्रवर्तमानम अन्यम जो प्रवृत्ति करने वाला दूसरा कोई मनुष्य है उसको तद विपरीत कायवांग मनोभिर विसंवादयति मन वचन काय से उससे विपरीत प्रवृत्ति कराता है मैवम कार्षीरेवम कुरु इति ऐसा मत करो ऐसा करो भगवान के ऊपर शांति धारा मत करो यंत्र पर करो ऐसे कई प्रकार की मतलब वो विसंवादन वाली स्थिति होती है तो ऐसा मत करो माँ एवं कार्षी ही एवं कुरु ऐसा मत करो ऐसा करो इति ये जो है ये विसंवादन है, ये अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है। एतदुभयम्, ये दोनों प्रकार का अशुभ नाम कर्म आश्रव कारण वेदितव्यम्, अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण जानना चाहिए। च शब्देन, च शब्द से और क्या लेना है, यहाँ पर अपने सूत्र में चाशुभ से लिखा ना च, उसका क्या है, तो मिथ्या दर्शन पैशून्य, मिथ्या दर्शन यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, पैशून्य का अर्थ चुगलखोरी, अस्थिर चित्तता मन की चंचलता, कूटमान तुलाकरण, कूटमान तुलाकरण का मतलब जाली नाप तौल के साधन रखना, फिर परनिंदा दूसरों की निंदा करना, आत्म प्रशंसा आदि करना, ये भी समुच्चयते, इनका भी यहाँ पर समुच्चय संग्रह हो जाता है। अतः शुभ नाम कर्मण का आश्रव इति अत्र उच्यते। अब शुभ नाम कर्म का आश्रव कौन सा है, तो कहते हैं तद विपरीतम शुभस्य, उससे विपरीत जो ऊपर जितनी बातें बताई ना इससे उल्टा शुभस्य, शुभ नाम कर्म का पुण्य का कारण है। काय वांग मनसा मृजुत्वम अविसंवादनम चित्तद विपरीतम, मन वचन काय की सरलता और दूसरों को अन्यथा प्रवृत्ति न कराना, ये उससे विपरीत हो गया। च शब्देन, च शब्द से क्या समुच्चितस्य च विपरीतक विपरीतम ग्राह्यम, उस च शब्द में जो चीजें थी ना, मिथ्या दर्शन के बदले सम्यक दर्शन लेना, पैशून्य के बदले चुगली न करना, अपैशून्य, अस्थिर चित्तता के बदले स्थिर चित्तता, फिर कूटमान तुलाकरण के बदले सम्यक मान तुलाकरण हो जाएगा, फिर परनिंदा के बदले आत्मनिंदा, और आत्म प्रशंसा के बदले पर प्रशंसा आदि, इसका समुच्चय हो जाएगा। तो ये सब पुण्य का कारण हो गए। धार्मिक दर्शन संभ्रम, अब देखो जो धार्मिक जन है उनको देखते ही साथ संभ्रम का मतलब क्या होता है, अब ये ऑटोमेटिक होता, मतलब ये बनावटी नाटक नहीं करना पड़ता इसमें। जैसे साधु आ रहे हैं तो संभ्रम का मतलब होता है हड़बड़ी, एकदम उनको आते देख करके एकदम खलबली सी मच जाती है अंदर में, उठ करके खड़े होते हैं, एकदम हाथ जोड़ लेते हैं और फिर भागते हुए जाते हैं। ये सब चीजें जो होती है ये इसका कारण है, शुभ नाम कर्म का पुण्य का कारण है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, इतनी उछल कूद मचा रहे बोले साधु को देख कर, लेकिन ऐसा नहीं, उनको महत्व नहीं मालूम है इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। यहाँ पर क्या कहा, धार्मिक दर्शन संभ्रम, धार्मिक को देख कर उनके दर्शन होने पर संभ्रम यानी एकदम हड़बड़ी मच जाना, फिर सद्भाव, फिर उनके प्रति सद्भाव उत्पन्न होना, उपनयन अथवा सद्भाव को अलग ले लो कि अपने अंदर अच्छे भाव रखना, तो बहुत सारे इसके अर्थ निकाल सकते हैं। समास विग्रह अलग अलग प्रकार से करो ना, धार्मिक जनों के दर्शन करना अथवा दर्शन में संभ्रम होना, और सद्भाव माने शुभ भाव रखना, फिर उपनयन, उपनयन का अर्थ वो तो ठीक है, उपनयन तो लिखा, वैसे एक उपनयन जो क्रियाएं बताई ना श्रावकों की, उसमें एक उपनयन संस्कार भी होता है, जैसे 8 मूल गुण धारण करके जनेऊ धारण करते हैं ना, उसको भी उपनयन कहते हैं। या उपनयन का मतलब अपने समीप बुलाना या समीप लाना कि आप हमारे यहाँ पर आइए, हमारे गांव में, हमारे नगर में आइए, ये भी, या उनको लेने जाना, उपनयन का मतलब लाना अपने मंदिर में लाना, ये भी सब साधु संघों को अपने यहाँ लाना, ये भी शुभ नाम कर्म का आश्रव है। संसरण भीरुता, संसरण भीरुता मतलब 4 गतियों में भ्रमण करने से भयभीत रहना, भीरु होना, प्रमाद वर्जन आदि, और प्रमाद जो है उसका त्याग करना आदि, तदेतत, ये सब शुभ नाम कर्म आश्रव कारणम वेदितव्यम, शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण जानने चाहिए। आहा, कोई कहता है कि किम एतावानेव शुभ नामना आश्रव विधिरुक्त कश्चित अस्ति प्रतिविशेष इति अत्र उच्यते, बोले कि क्या इतने ही शुभ नाम कर्म के आश्रव की विधि है, अथवा और भी कोई विशेष है, कोई खास शुभ नाम कर्म के आश्रव संबंधी विधि? तो बोलते हैं कि यदिदम तीर्थकर नाम कर्म अनंतानुपम प्रभावम जो यह तीर्थंकर नाम कर्म की नाम की प्रकृति है कैसी है, वो अनंत और अनुपम प्रभाव वाली है। अनंत उसका प्रभाव है और अनुपम, जिसकी कोई दूसरी उपमा नहीं है, और अचिंत विभूति विशेष कारण, और जिसका चिंतन न किया जा सके ऐसे विभूति विशेष का जो कारण है, त्रैलोक के विजय कर्म, तीन लोक पर विजय प्राप्त करने वाली जो तीर्थंकर नाम की प्रकृति है, तस्याश्रव विधि विशेषोस्ती। बोले उसके आश्रव की जो विधि है वो विशेष, माने इनसे अलग है। शुभ नाम कर्म की जो विधि बता रहे थे ना, उससे और अलग प्रकार की विधि है। यद्यवम, यदि ऐसा है तो उच्चतम के तस्याश्रवा, तो फिर ये कहा जाए कि तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव कौन से हैं। इति अत इद आर इदम आरभ्यते, इसलिए यहाँ से यह अगला सूत्र 24वां सूत्र प्रारंभ किया जाता है। अब ये तीर्थंकर प्रकृति की 16 कारण भावनाएं जो हैं इसमें आगे के सूत्र में बताई जाएंगी। अब तीर्थंकर प्रकृति का लाभ, उसका आश्रव 16 कारणों से होता है, वो बतलाते हैं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश्वनतीचारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैया वृत्तिकरण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। ये इतनी तीर्थकरत्व में कारणभूत भावनाएं हैं, 16 कारण भावनाएं। छठा अध्याय 24वां सूत्र है। जिनेन भगवता अरहत परमेष्ठिना उपदिष्टे, जिनेन्द्र भगवान जो अरहत परमेष्ठी हैं उनके द्वारा उपदिष्ट निर्ग्रंथ लक्षण मोक्ष वर्तनी वर्तमनी, निर्ग्रंथ है लक्षण जिसका, ऐसे मोक्ष मार्ग पर रुचिर जो रुचि है दर्शन विशुद्धि ही, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। प्रागुप्त लक्षण पहले उसका लक्षण बतला चुके हैं, यानी मोक्ष मार्ग के प्रति निर्ग्रंथ लक्षण मोक्ष मार्ग के प्रति जो रुचि है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में जो रुचि है वो दर्शन विशुद्धि है। तस्या अष्टावंगानी, उसके 8 अंग हैं, किसके दर्शन विशुद्धि के, निशंकितत्व निकांक्षिता विचिकित्सा विरहता अमूढ़ दृष्टिता उपबृंघणम स्थितीकरणम वात्सल्यम प्रभावनम चेति, जिनको अपन 8 अंग सम्यक दर्शन के कहते हैं ना, वही दर्शन विशुद्धि के 8 अंग हैं। निशंकितपना, निकांक्षिता, विचिकित्सा से रहित होना, और अमूढ़ दृष्टिता, उपबृंघण स्थितीकरण और वात्सल्य प्रभावना, ऐसे 8 अंग। ये सबसे मुख्य है 16 कारण भावनाओं में। अगर बाकी 15 भावनाओं में किसी का मन लग रहा हो लेकिन ये चीज़ ना हो तो वो तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं हो सकता। तीर्थंकर पद के लिए ये पहला जो है दर्शन विशुद्धि, ये सबसे अनिवार्य है। और सारी 16 कारण भावनाएं सबके पास तो होती नहीं, क्योंकि अलग अलग भूमिका में जितना बन सकती है भावनाएं उतनी तो हो सकती है, लेकिन सारी 16 भावनाएं तो मुनिराज में ही संभव है। मुनि पद के बिना पूरी 16 भावनाएं हो नहीं सकती, जैसे अभी आगे इसका खुलासा हो जाएगा। तो दर्शन विशुद्धि सबसे मुख्य है। राजा श्रेणिक के पास भी थी ये दर्शन विशुद्धि, जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उनको बिल्कुल व्यवस्थित रखना, उनको दूषित नहीं होने देना। निशंकित अंग यानी देवशास्त्र गुरु में शंका न करना, माने जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर शंका का मतलब संदेह है। यहाँ पर शंका का अर्थ प्रश्न नहीं है, शंका शब्द के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर शंका का अर्थ संदेह, शक, अविश्वास, ये न होना, निशंकित। फिर निकांक्षिता, अपनी श्रद्धा में किसी प्रकार की कांक्षा का न होना, भाई मैं देवशास्त्र गुरु को मानता हूँ इसलिए इसके बदले मुझे अमुक अमुक संपत्ति वैभव पद होनी चाहिए, ये कांक्षा कहलाती है। और श्रद्धा में आकांक्षा का न होना, व्यक्ति में आकांक्षा हो सकती है लेकिन श्रद्धा में आकांक्षा नहीं रखना, ये निकांक्षित है। जैसे चक्रवर्ती को इच्छा थी भरत का पूरा साम्राज्य जो था, 6 खंड का साम्राज्य, उसको इच्छा थी कि मैं अयोध्या का राजा चक्रवर्ती पद प्राप्त करूं, लेकिन वो चक्र रुक गया बाहर, पता है ना। फिर बाहुबली के साथ युद्ध हुआ, तो बाहुबली के साथ जब युद्ध हुआ तो फिर चक्र बाहुबली के ऊपर भी चलाया उन्होंने। तो देखो, कांक्षा थी चक्रवर्ती पद की, और उसमें अड़चन कौन बने, बाहुबली, तो चक्र चला दिया। तो ये श्रद्धा में आकांक्षा नहीं कहलाई, ये आकांक्षा कौन सी थी, ये व्यावहारिक जगत की आकांक्षा थी। माने संसार में चक्रवर्ती पद एक बहुत बड़ा पद होता है, उसकी आकांक्षा में उसने भरत ने चक्र चला दिया था लड़ाई की। लेकिन श्रद्धा, अगर देवशास्त्र गुरु की जो आस्था है उसमें कभी भी आकांक्षा नहीं होगी, ठीक है। फिर देखें तो निकांक्षिता इसका नाम है। जैसे इसका एक उदाहरण हम ये देते हैं कि 100 रुपये के पीछे सम्यक दृष्टि की किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, लेकिन लाखों रुपये में वो अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ सकता। माने अपने श्रद्धे देवशास्त्र गुरु से उसकी श्रद्धा को हटाने की कोशिश करो, आप लाखों करोड़ों रुपये दे करके तैयार नहीं होगा, और 100 रुपये के पीछे कहो हाथापाई कर ले, ये हो सकता है। तो ये निकांक्षिता। फिर विचिकित्सा विरहता, साधुओं के शरीर में जो कभी दुर्गंध आए, कभी कोई रोग हो जाए, कभी मैल जमा हो जाए, या और भी कोई ऐसी स्थिति बन जाए, बीमार पड़ जाए, कभी घाव में मवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो ग्लानी नहीं करता और सेवा करता है। बिल्कुल जैसे माँ बच्चे की देखरेख करती है, वैसे वो भक्त सम्यक दृष्टि गुरुओं की सेवा करता है, और साधु साधु भी आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं। फिर अमूढ़ दृष्टिता। अमूढ़ दृष्टिता का मतलब किसी भी लौकिक चमत्कार से प्रभावित होकर अपने धर्म से विचलित, अपनी श्रद्धा से विचलित नहीं होना। अब जैसे आप बहुत दिनों से जैन धर्म को मान रहे हैं, अब यहाँ आपने एक भी चमत्कार नहीं देखा, और कहीं किसी जगह बाबा जी ने कोई चमत्कार दिखा दिया, आपको लगा कि भाई यही सच्चा धर्म है, अपन तो क्या फालतू पड़े थे, ऐसा नहीं। ये अमूढ़ दृष्टिता। फिर उपब्रिंघण। उपब्रिंघण का मतलब अपने गुणों की वृद्धि करना। कैसे करोगे, तो दूसरों की निंदा नहीं करना। मैंने साधु से अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती को प्रचारित नहीं करना, उपब्रिंघण हो गया। फिर स्थितिकरण, इसको उपगोहन भी बोलते हैं। स्थितिकरण का मतलब अगर कोई साधु मार्ग से भटक रहे हो थोड़ा, तो फिर उनको मार्ग में स्थिर करने का प्रयास करना। वो अगर गिर रहे हैं अपने रास्ते से, तो उनको उसी रास्ते पर स्थिर करने का भरसक प्रयास करना स्थितिकरण है। या किसी उपाय से करना, अपन खुद नहीं कर सकते तो फिर किसी भी तरीके से उनको मार्ग पर स्थिर रखना स्थितिकरण है। फिर वात्सल्य का अर्थ होता है जैसे गाय का बछड़े पर स्नेह होता है, गाय को कोई भविष्य की आकांक्षा नहीं होती कि ये बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, ऐसा कुछ नहीं, निस्वार्थ प्रेम है। तो वैसे ही अपने धार्मिक जनों के प्रति वात्सल्य रखना। फिर प्रभावना। प्रभावना का मतलब जैन धर्म का प्रभाव बढ़े, इस तरीके का कोई भी काम करना, मतलब जनता में और फिर सब जगह धर्म की प्रभावना हो। ये तो हो गया दर्शन विशुद्धि का वर्णन। इसके आगे विनय संपन्नता। सम्यक ज्ञानादिषु मोक्ष मार्गेषु तत्साधनेषु च गुर्वादिषु स्वयोग्य वृत्त्या सत्कार आदरो विनयस्तेन संपन्नता विनय संपन्नता। सम्यक ज्ञान आदि के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति, तत्साधनेषु मोक्ष मार्ग के जो भी साधन हैं, जितने भी सहायक साधन हैं मोक्ष मार्ग में, उनके प्रति, और गुरुवादिषु गुरुवादिक के प्रति, स्वयोग्य वृत्ति अपनी योग्य प्रवृत्ति के द्वारा, या अपने योग्य जो प्रवृत्ति अपन जितना कर सकते हैं उतना सत्कार आदर है। सत्कार करना, आदर करना, विनय करना, तीन संपन्नता, उस विनय से संपन्न होना, कभी उसमें कमी नहीं आना, उसका नाम है विनय संपन्नता। अब एक बार नमस्कार कर लिया, मान लो दूसरी बार करने जा रहे हैं नमस्कार, तो फिर अब भी तो किया था सुबह नमस्कार, तो दूसरी बार नमस्कार करने में थोड़ी सी भावना कमजोर पड़ जाए, तो ऐसा नहीं, जितनी बार कर रहे हो उतनी बार उसी ताजगी के साथ, उसी भावना के साथ करो।